भी इस बात को कह रहा है, भागवत की ही बात है, कोई नई नहीं है, कि जो माँ के घर में बच्चा है वो सब सुनता है और वैसा ही संस्कार उस बच्चे पर पड़ रहा है। माँ जैसा चिंतन कर रही है, जैसा खा रही है, चल रही है, उसकी हर क्रिया को बच्चा समझ रहा है जो माँ के पेट में है, और वैसी छाप, वैसी ही संस्कार उस बच्चे पर पड़ रहे हैं। ये आज मेडिकल साइंस ने ये बात सिद्ध की है, लेकिन भागवत में तो पहले ही लिखा है। प्रहलाद जी ने ये बात कही है भागवत में कि मैंने अपनी मां के पेट में ही अपने गुरु नारद के मुख से भगवान के नाम की शक्ति को जान लिया था कि परमात्मा के नाम में कितना शक्ति है। तो मेरे गुरुदेव हैं नारद, बोले भैया आपके गुरुजी ने आपको क्या सिखाया, खेल हमें थोड़ा बता दो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे गुरुदेव का यदि खेल देखना हो तो अपने अपने घर से मजीरा खड़ताल ले आओ, मैं गुरुजी का खेल दिखा देता हूँ। तो दैत्य बालक गए और मजीरा खड़ताल ढोल की लेकर के आ गए। प्रहलाद जी को बीच में बिठा करके सबसे प्रहलाद जी भगवान नाम संकीर्तन कराने लगे। प्रहलाद का और कोई खेल नहीं था, भगवान का नाम संकीर्तन यही एक खेल बचपन से ही खेलते थे। तो प्रहलाद जी सब दैत्य बालकों के साथ खेलते हुए कीर्तन करने लगे और कराने लगे। आइए, कितना सुंदर भाव था श्री प्रहलाद जी का, हम प्रहलाद जी के साथ थोड़ा मिलकर के गुनगुनाएं और ठाकुर के श्री चरणों में ये प्रार्थना करें। नैया ले चल परनी पार,
ओ नैया
Yeah.
अखिया खूब थका बैठी हूँ,
अपना आप लुटा बैठी हूँ,
अपना आप लुटा बैठी हूँ।
सांवरिया में तेरी रागिनी,
सांवरिया में तेरी रागिनी,
सांवरिया कर दो नैया पार।
हार गई मैं,
क्यों छोड़ा मझधार
ले चल पर ली पारैया, ले चल पर ली पार,
जहां विराजे राधा रानी,
जहां विराजे राधा रानी,
जहां बजाते हुए भगवान नाम संकीर्तन जब करने लगे, दैत्य बालक आज तक ऐसा आनंद न कभी देखा न कभी कानों से सुना। लेकिन प्रहलाद जी महाराज को कीर्तन करते देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना डूब गए कि देह का भी भान नहीं रहा। लेकिन जब संडामरक आए और आकर के देखा, अब तक तो प्रहलाद अकेले ही प्रभु का नाम लेता था, अब तो उसने सारी की सारी पाठशाला की पाठशाला ही बिगाड़ दी है। अरे हमने कोई कीर्तन मंडली नहीं खोली है, हम तो गुरुकुल चला रहे हैं, ये विद्यालय। सन्नामर्क दौड़ करके महाराज के पास गए हिरण्यकश्यपु के, और जाकर के उनको खबर दी कि महाराज बुलाए लो अपने छोरा को, उसने तो सबको विष्णु का भक्त बना दिया है। सेनापति को भेजा, सेनापति आए और मंदिर के प्रांगण में जब प्रवेश किया तो सेनापति भी मिलकर के प्रहलाद जी के साथ भगवान नाम संकीर्तन करने लगा। भूल गया कि मैं तो प्रहलाद को लेने आया था। कीर्तन बंद करा करके प्रहलाद जी को कहा कि आपको पिता ने याद किया है। प्रहलाद जी महाराज दैत्य बालकों को समझा रहे थे कि भैया तुम चलो कीर्तन करो, मैं अभी आया। सभी दैत्य बालकों ने कहा कि नहीं प्रहलाद, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम सब कीर्तन करते हुए जाएंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा कि देखो भैया, मैं जब कीर्तन करता हूँ तो पिता को बहुत तकलीफ होती है, और आप सबको देखेंगे तो उनको ज़्यादा क्रोध आएगा, तो तुम ऐसा करो कि तुम बैठ कर के कीर्तन करो, मैं अभी आया। बोले नहीं प्रहलाद, अरे भैया यदि मंडली से मंडलेश्वर चले गए तो फिर मंडली ही बिगड़ जाएगी। जब नहीं माने तो प्रहलाद जी महाराज सबके साथ कीर्तन करते हुए जब पहुंचे राजसभा के पास, हिरण्यकश्यपु छत पर खड़ा था। देखा जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी महाराज को आते हुए, कितना सुंदर मेरा पुत्र लग रहा है, जैसे कि आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा। जब कीर्तन मंडली पास आई और हरि नाम का कीर्तन सुना और कानों के द्वारा हिरण्यकश्यपु के जब हृदय तक प्रभु का नाम गया, प्रविष्ट कर्ण रंध्रे न, कितना बड़ा भी कोई पापी व्यक्ति क्यों न हो, एक बार जब भगवान के नाम संकीर्तन में पहुंच जाता है वो, और उसके कान में जब परमात्मा का नाम पहुंच जाए तो प्रभु के नाम लिए बगैर वो रह ही नहीं सकता। आज प्रहलाद जी महाराज के मुख से जब हिरण्यकश्यपु ने भगवान के नाम को सुना और कानों के द्वारा जब उसके हृदय तक प्रभु का नाम पहुंचा, तो एक बार तो हिरण्यकश्यपु की भी ताली बज गई है और मुख से हरिनाम निकल पड़ा। हरिबो
हरिबो
श्री राधे
श्री राधे।
थोड़ी देर में हिरण्यकश्यपु को याद आई, अरे मैं भी अपने पुत्र प्रहलाद के साथ विष्णु का भजन करने लगा। नीचे उतरा छत से और प्रहलाद जी महाराज को देख करके उसने कहा कि प्रहलाद तू विष्णु का भजन करना छोड़ दे। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी आप मुझे खाने को मत दो, कपड़े पहनने को मत दो, लेकिन मुझसे हरिनाम मत छुड़ाओ। तू विष्णु विष्णु कहता है, ये बता कि तेरा विष्णु रहता कहाँ है। मैं तेरे विष्णु को विष्णु लोक तक ढूंढ आया, वहां भी तेरा विष्णु नहीं मिला। इस संसार में विष्णु नाम की कोई शक्ति है ही नहीं, ये बता कहाँ रहता है तेरा विष्णु। अब प्रहलाद जी बोले कि पिताजी मेरा विष्णु तो व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। यदि आप मेरी आंखों से देखें तो आपको सर्वत्र विष्णु का दर्शन होगा। तू कहता है कि मेरा विष्णु सर्वत्र है, तब तो तेरे अंदर भी बैठा होगा। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे भगवान आपके अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं। बोले तब तो मेरे अंदर भी बैठा होगा। तो प्रहलाद जी ने कहा आपके अंदर भी है। कैसा मूर्ख है। तब तो प्रहलाद मेरे हाथ में ये तलवार देख रहा है, क्या इस तलवार में भी तेरा भगवान विष्णु बैठा है? प्रहलाद जी ने कहा, इस खड्ग में भी मेरा परमात्मा बैठा है, ये विश्वास है भक्त का। प्रहलाद, तस्मात स्तंभेन दृश्यते, क्या इस खंभ में भी तेरा परमात्मा बैठा है? इस खंभ में तो दिखाई पड़ता नहीं है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मो में तो में खड्ग खंभ में, जहां देखो तहां राम। यदि तेरा विष्णु सच है और इस खंभ में भी है, इतना कहकर के तुरंत दौड़ता हुआ हिरण्यकश्यप उस खंभ के पास में गया और जाकर के उस खंभ के मध्य में एक मुष्टिक का प्रहार किया। झट उस खंभ के दो टुकड़े हो गए। एक झूलता हुआ सिंहासन निकल पड़ा और जिसके ऊपर जिनका मुख तो सिंह के जैसा और शरीर नर के जैसा, ऐसे नृसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। नृसिंह देव
भगवान की जय।
नृसिंह भगवान का दर्शन करके हिरण्यकश्यप ने कहा, न तो ये नर है न ये पशु है, नृसिंह रूप लेकर के आया है। आज मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला इस नृसिंह से लूंगा। इतना कहकर के भगवान को ललकारा। भगवान सिंहासन से नीचे उतरे और युद्ध हुआ। अंत में प्रभु ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, बीच सभा की देली पर जाकर के भगवान बैठ गए और अपनी गोद में हिरण्यकश्यप को प्रभु ने लिटा लिया। भगवान बोले, देख न तो दिन है न रात है, संधि काल का समय है, न तू घर में है न बाहर है, बीच देली पर है, न भूमि में है न आकाश में है, मेरी गोद में है। और देख, तूने ये कहा था कि 12 महीने मेरी मृत्यु ना हो, तो भगवान ने कहा, ले मैंने तेरे लिए 13वां महीना भी प्रकट कर दिया, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। और भगवान बोले कि अब तुझे ना मैं शस्त्र से मारूंगा ना अस्त्र से मारूंगा। इतना कहकर के अपने नख प्रकट कर लिए और नखों से हिरण्यकश्यप की छाती प्रभु ने चीर डाली है। आते भगवान ने निकाल ली और माला के रूप में अपने गले में धारण कर ली। सिंहासन पर भगवान चढ़ गए और जोर जोर से प्रभु गर्जना करने लगे। देवता भगवान की स्तुति कर रहे थे, लेकिन कोई भी भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पाया। अंत में ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर श्री प्रहलाद जी महाराज एक एक सीढ़ियां सिंहासन की चढ़ते हुए भगवान की स्तुति करने लगे हैं कि ब्रह्मादय सुरगणा मुनयो। नमतयो वचसा प्रभा नाराधितुं गुरुरधुना पपिप्रो किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी ने भगवान को प्रणाम करके कहा कि प्रभु, मैं तो एक बालक हूं, कहां आप, मेरे पास तो शब्द नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं गोविंद। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि एक ब्राह्मण है और जिस ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणत्व है, आपके चरणों में उस ब्राह्मण की यदि भक्ति नहीं है तो उससे आप कभी प्रसन्न नहीं होते। और एक स्वपच जिसके अंदर कोई ब्राह्मणत्व नहीं है, कोई ऐसी पूजा नहीं है, आपके चरणों में उस स्वपच की यदि भक्ति है, प्रीति है, तो आप उस स्वपच की भक्ति से गोविंद प्रसन्न हो जाते हो। उस गजेंद्र में ऐसी कौन सी भक्ति थी जिसने केवल आपको एक फूल ही भेंट किया था और आप अपने भक्त की रक्षा करने के लिए बिना वाहन के नंगे पांव अपने परम धाम से दौड़कर के प्रभु आए थे ना? आज आपने प्रभु मेरी रक्षा की, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान कहाँ तू गर्जना कर रहे थे। प्रभु ने गर्जना करनी तो छोड़ दी और सिंहासन से नीचे कूद करके अपनी गोद में अपने भक्त को प्रभु ने उठा लिया है। बोलो भक्तवत्सल
भगवान की जय।
और प्रहलाद से भगवान ने कहा कि तू मेरे से वर मांग। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन प्रहलाद जी ने कितना सुंदर वर प्रार्थना भगवान से की है भागवत में कि स्वस्तस्व विश्वस्य खलः प्रसीदता ध्यायन्त भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता ददोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्य हेतु। प्रहलाद जी ने भगवान को कहा कि प्रभु मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि आप सारे जगत का कल्याण करें, दुष्टों की बुद्धि प्रभु शुद्ध हो, सब प्राणी परस्पर सद्भावना में रहें, एक दूसरे के प्रति सद्भावना हो प्रभु, हम कभी मन से किसी का अहित चिंतन नहीं करें, सबका हित हो, और प्रभु हमारी बुद्धि निष्काम भाव से आपके श्री चरणों में प्रवेश करे, आपके चरणों का चिंतन करे। भगवान ने कहा कि ये तो तूने कोई वर नहीं मांगा, ये तो मैं देता ही हूं। ये प्रहलाद जी ने भागवत में भगवान से ये पंचम स्कंद में पूर्व ये प्रहलाद की भावना है। हम लोग कहते हैं ना कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये प्रहलाद जी के द्वारा ही प्रदत्त ये भागवत में मंत्र है। सारे विश्व के कल्याण के लिए प्रहलाद जी ने मांगा है कि सब जगत का कल्याण हो। लेकिन भगवान ने कहा कि तू मेरे से कुछ मांग। तो प्रहलाद जी ने कहा कि यदि प्रभु आप देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे अंदर कभी कोई कामना ही ना हो। भगवान बोले ये क्या वर हुआ, कुछ तो मांग बेटा। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु यदि आप देना चाहते हो तो ये वरदान दो, मेरा पिता आपके चरणों में मरा पड़ा है प्रभु, और इसने आपको पानी पी पी करके गाली दी थी, आपकी सत्ता को भी चुनौती दी, आपकी शक्ति को इन्होंने नहीं पहचाना, लेकिन मेरे पिता हैं, मैं इनका पुत्र हूं, मैं इनका आत्मज हूं, और पुत्र कहलाने का अधिकारी तो वही है जो अपने पिता को नरक से तार दे, माता पिता को नरक से तार दे वो पुत्र है, जो पुन्ना नाम के नरक से तार देता है। और मैंने सुना है संतों के मुख से कि जो आपकी सत्ता को चुनौती देता है, जो आपका अपमान करता है, आपको गाली देता है, उसे नरक मिलता है। लेकिन हे नरसिंह प्रभु, आप इतनी कृपा करना कि मेरे पिता को आप नरक में नहीं डालना, नरक में नहीं। इतना सुनते ही भगवान की आंखों में आंसू आ गए, परमात्मा नरसिंह रो पड़े, और प्रहलाद के सिर पर हाथ फेरते हुए भगवान ने कहा कि बेटा तू तो केवल अपने पिता की बातें करता है, आज से मैं तुझे वचन दे रहा हूँ, तेरे से संकल्प कर रहा हूँ कि तेरे कुल में मेरा कोई कितना भी अपमान करे, कितना भी तिरस्कार करे, कितना भी मुझे गाली क्यों न दे, लेकिन प्रहलाद आज मैं तुझे वचन देता हूँ कि आज से मैंने तेरी 21 पीढ़ियां ही पवित्र कर दी है। त्रिशप्त भी पिता पोत पितृ भी सहते नख। ऐसा कह करके भगवान ने कहा कि तू संसार में सुख भोग और अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। भगवान दर्शन देकर के अंतर्ध्यान हुए। आगे भगवान के दिव्य उस हरि अवतार की कथा है, ग्राह से गजेंद्र को प्रभु ने छुड़ाया और दोनों को अपने परम धाम की प्राप्ति कराई, जिस गजेंद्र ने भगवान को स्तुति की भागवत में, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाया दिविजाय परेशाया विधीमहि। ये गजेंद्र की रक्षा प्रभु ने की है ग्राह से, और देवता और दैत्य दोनों को मिलाकर के परस्पर प्रभु ने सागर मंथन भी कराया है। यथा भगवता ब्रह्मन मथित क्षीर सागर, ये मंथन कौन सा मंथन है? ये मंथन मनोमंथन है, और हर प्राणी के अंदर ये मनोमंथन होता है, लेकिन ये मनोमंथन कभी सुर बोलते हैं तो कभी हमारे अंदर असुर बजने लगते हैं। देवता भी बैठे हैं और दैत्य भी बैठे हैं, कभी हमारे अंदर मन में अच्छी भावना आती है, कभी बुरी भावना आती है, तो समझ लेना जब बुरी भावना मन में आए तो असुर प्रवृत्ति यानी असुरों का हमारे मन बुद्धि पर प्रभाव हो गया है, और अच्छे अच्छे विचार हमारे मन में आए तो समझ लेना कि हमारे देव बुद्धि हो गई है। ये मंथन हो रहा है, मनोमंथन भी है एक, क्योंकि हर कथा का एक अध्यात्म दृष्टि भी भागवत की है। तो मनोमंथन, लेकिन पहले निकला था जहर, यानी ये मंदराचल पर्वत ये हमारा मन है, इसका जब मंथन होता है तो सबसे पहले जीवन में मनोमंथन के समय विषय वासना का जहर निकलता है। लेकिन साधक अपने मन को जब मंदराचल पर्वत की तरह स्थिर जब रखता है तो उसे अमृत फल प्राप्त होता है। अमृत फल है ये भक्ति, अमृत फल है ज्ञान। कोई ज्ञान मार्गी है तो कोई भक्ति का उपासक है, लेकिन कलौ भक्ति, कलिकाल में हम सबका कल्याण करने में कोई समर्थ है तो केवल वो भक्ति है। भक्ति का आश्रय हमें अवश्य लेना है परमात्मा की। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक दिन कश्यप जी महाराज अपनी अदिति स्त्री के आश्रम पर गए थे और अदिति जी बहुत उदास हैं। तो अदिति जी को उदास देखकर के कश्यप जी ने पूछा कि अदिति आप दुखी क्यों हैं? बोले मेरे पुत्र देवता सुखी नहीं हैं, उनसे स्वर्ग की राजलक्ष्मी छीन ली गई है दैत्यों के द्वारा। तो कहा कश्यप जी ने मन में कि मैंने एक व्रत बताया था अपनी दिति को भागवत में, छठे स्कंद की समाप्ति पर पुंसवत नाम का व्रत, लेकिन भागवत में कश्यप जी महाराज ने अपनी अदिति को भी एक व्रत बताया, ये पयोव्रत नाम का व्रत संतान सुख के लिए, और इस व्रत को बताकर के कहा कि तुम इस व्रत को करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत को जब किया अदिति जी ने, इस व्रत के प्रभाव से उनको प्रभु का दर्शन हुआ। दर्शन कर प्रभु का इन्होंने भगवान से मांगा कि प्रभु मैं चाहती हूँ कि मेरे गर्भ से आप प्रकट हों। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्धान हुए। कश्यप जी के द्वारा अदिति जी ने गर्भ धारण किया, और पवित्र मास भादों का शुक्ल पक्ष, विजया नाम द्वादशी तिथि, और मंगल में मुहूर्त, अवजित मुहूर्त, ऐसे सुंदर समय में दिन के ठीक मध्याह्न के समय, तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। साक्षात अदिति के गर्भ से भगवान बामन बनकर के प्रकट हो गए हैं। बोला बामन देव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री लाल। बामन बन करके प्रभु प्रकट हुए। आइए उस झांकी का भी एक मिनट आप लोग दर्शन करिए, क्योंकि ये विशेष प्रभु का अवतार है, बामन अवतार भागवत में। बैठ करके दिव्य उस झांकी का भी आप लोग दर्शन करें, कितना सुंदर बामन बनकर के प्रभु आए थे। बृहस्पतिर ब्रह्म सूत्रम मेखलाम कश्यपो ददात। गोलोक ने भगवान को छत्र दिया था, पृथ्वी ने भगवान को आसन दिया था, बृहस्पति जी ने उनके गले में जनेऊ डाला, माँ ने उनको कौपीन पहनाई, कश्यप जी ने अपने पुत्र को मेखला धारण कराई और सरस्वती जी ने भगवान के गले में रुद्राक्ष की माला डाल दी। भिक्षा का पात्र कुबेर ने भगवान को दिया और कमंडलू ब्रह्मा जी ने लाकर के प्रभु को पकड़ा दिया। भगवान उस दिव्य श्रृंगार को धारण कर अपने गुरु बृहस्पति जी की आज्ञा से माँ पार्वती से भिक्षा लेकर के अब गुरु की आज्ञा से जा रहे नर्मदा के उत्तर तट की ओर। कितना सुंदर प्रभु का स्वरूप है वामन देव भगवान का दिव्य झांकी।
गोविंद राधे माधवा
से नर्मदा के उत्तर तट पर गए। राजा बलि ने बामन भगवान का स्वागत किया और पूछा कि हे ब्राह्मण के पुत्र, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, आपका स्वागत है, स्वागत है, आप मेरे द्वार पर आए हैं, आपको क्या चाहिए कहें? तो कहा, वामन देव प्रभु ने कि राजा मैं तेरे द्वार पर तस्मात्त्वतो महिमीषत ब्रणेहम बरदर्शभात पदान त्रीण दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। मैं तेरे द्वार पर तीन पग पृथ्वी मांगने के लिए आया हूं। जो सुना तो हंसने लगे राजा बलि। कहा महाराज आपको मालूम है आप किसके द्वार पर खड़े हो? मैं एक चक्रवर्ती राजा हूं और मेरे जैसे चक्रवर्ती राजा को आपने प्रसन्न कर लिया और मांग रहे हो तीन पग पृथ्वी, इतना छोटी भूमि लेकर के क्या करोगे? छोटी सी कुटिया बना करके मैं उसमें बैठकर के भजन करूंगा और मुझे क्या करना है? तो राजा बलि ने कहा कि महाराज मैं आपको तीन पग पृथ्वी का दान करूंगा दूंगा, ये मैं आपको वचन दे रहा हूं। लेकिन एक बात बताइए कि कुछ आप ज्यादा नहीं ले सकते? तो कहा वामन देव जी ने कि राजा हम तो भैया बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको तो केवल तीन पग पृथ्वी चाहिए। अब तक उस यज्ञ स्थल पर शुक्राचार्य ये राजा बलि के पुरोहित हैं, यज्ञ के कामों में लगे हुए थे। तो शुक्राचार्य जी को आवाज लगाई और आवाज लगा करके शुक्राचार्य जी को कहा कि महाराज आप भी ब्राह्मण हैं और ये ब्राह्मण बालक है और ब्राह्मण ब्राह्मण की बात तो जल्दी मान जाते हैं, थोड़ा आप इनको समझा दीजिए कि मेरे से तीन पग पृथ्वी की याचना कर रहा है। तो शुक्राचार्य जी ने अपने यज्ञ के कामों से दृष्टि हटाकर जब सिंह द्वार की ओर देखा तो राजा बलि से बोले, बलि ये कौन है? बोले ये तो ब्राह्मण का पुत्र है। तो कहा कि राजा ये ब्राह्मण के पुत्र नहीं है कि ऐश बेरो चने साक्षा भगवान विष्णु रव्यय कस्य पाद दितेर जातो देवानां कार्य साधक। तेरे द्वार पर ये नारायण खड़े हैं और मालूम है तेरे से तीन पग पृथ्वी क्यों मांग रहे हैं? एक पैर में ऊपर के सब लोग नाप लेंगे और दूसरे पग में नीचे के लोग नाप लेंगे और जब तीसरे पग पृथ्वी नहीं बचेगी तो कुतो गति, मालूम है तुझे नरक में डाल देंगे ये। राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव ये भगवान हैं तब तो मैं अवश्य दान करूंगा तीन पग पृथ्वी का, क्योंकि मैं तो एक लोक का राजा हूं और आज मेरे द्वार पर कोट कोट ब्रह्मांडों के राजा भिखारी बने खड़े हैं, तब तो अवश्य दान करूंगा, अवश्य दूंगा, चाहे मेरा आज सर्वस्व क्यों न चला जाए। अब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को श्राप दिया लेकिन उस श्राप की भी चिंता नहीं की। उसी समय अपनी पत्नी विंध्याबली जी को आवाज लगाई, ये विंध्याबली जी जल की झारी भर करके लाई लेकिन शुक्राचार्य जी को नहीं देखा गया। शुक्राचार्य जी उस कमंडलू में छोटा रूप धारण करके बैठ गए क्योंकि संकल्प होगा भूमि का दान होना है। शुक्राचार्य जी ने विचार किया कि यदि आज भगवान ने सर्वस्व हरण कर लिया, यदि यजमान लुट गए तो मानो पुरोहित ही लुट गए, तो मैं कमंडलू से बाहर पानी निकलने ही नहीं दूंगा। और एक आंख कमंडलू की टोंटी पर लगा ली ये देखने के लिए कि भगवान बाहर मेरे यजमान से क्या लीला करा रहे हैं। जब कमंडलू को टेढ़ा किया संकल्प के लिए पानी लेने के लिए तो उसमें से पानी नहीं निकल रहा है। अब भगवान तो जानते थे कि अंदर बैठे हैं शुक्राचार्य लघु रूप धारण करके, बार बार कमंडलू को टेढ़ा करें लेकिन पानी बाहर नहीं निकल रहा था। तो भगवान शुक्राचार्य जी अंदर बैठे हैं ये जानकर राजा बलि से बोले कि राजा बलि, ऐसा लगता है कि रास्ता में कुछ अटक गया है, ले रास्ता साफ कर ले। तो भगवान की कांख में कुशा का आसन लगा हुआ था, उससे दो तिलियां प्रभु ने निकाली और शुक्राचार्य जी के हाथ में दी और कहा कि रास्ता साफ कर ले। जो कमंडलों की टोंटी में वो तिली डाली तो शुक्राचार्य जी की एक आंख लगी हुई थी, तो एक आंख ही गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य बोले कि राजा बलि के कारण तो हमने अपनी आंख को भी फोड़वा लिया, अब भले ही भगवान सर्वस्व हरण करके क्यों न ले जाएं, फिर भी हम एक शब्द नहीं बोलेंगे। पानी बाहर निकला, राजा बलि से भगवान ने कहा कि राजा बलि, मैं संकल्प बोल रहा हूं, तुम संकल्प में अपनी इच्छा रखो। तो कहा राजा ने कि महाराज, आप ये संकल्प में बोलें कि मेरे इस भूमि दान से भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएं। बस इतना सुनते ही भगवान का मन गदगद हो गया। भगवान बोले, धन्य है राजा तुझे, आज तू मेरे लिए भूमि दान कर रहा है और मेरी ही खुशी के लिए, अपनी तरी कोई खुशी नहीं है तो खुशी में कौन बड़ा नहीं होता। राजा की बात को सुनकर के इतना गदगद प्रभु हो गए कि आज बामन से भगवान विराट बन गए हैं। एक पैर में भगवान ने ऊपर के सब लोक नाप लिए, दूसरे पग में नीचे के लोक नाप लिए और तीसरा पग जब पृथ्वी नहीं बची तो राजा बलि को पाश में बांध लिया और बोले कि मुझे तीसरे पग पृथ्वी का दान कर। राजा बलि ने कहा कि ये बार बार आप कहते हो कि मैं नरक में डाल दूंगा, डर दिखा रहे थे, भगवान ने पाश में बांध रखा था, ये क्यों आप डर दिखाते हो महाराज, क्या आप इसी भेष से मेरे द्वार पर आए थे? राजा, मैं क्या बदल गया हूं? बोले महाराज, आप तो दान लेने के बाद इतना बदल गए, आज तक तो कोई ब्राह्मण नहीं बदला, आप तो इतने लंबे चौड़े बन गए हो, यदि फिर आप विराट से वामन बन जाए तो मैं अपने तीसरे वचन को भी सत्य करके दिखा दूं। तो राजा बलि की प्रार्थना पर भगवान विराट से फिर वामन बन गए और राजा बलि को कहा कि मुझे तीसरे पग पृथ्वी का दान कर। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु, मैंने आपके विराट रूप में सबको देखा, अपनी पत्नी को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपने परिवार को देखा, अपने राज्य को देखा, अपने कोष को देखा, अपनी सेना को देखा, लेकिन मैंने अपने आप को कहीं नहीं देखा। प्रभु, आपने मेरा सर्वस्व जब ले लिया तो फिर मुझे क्यों छोड़ा? कि पदम तृतीयम, अब ये अपना तीसरा पग आप उठाइए, कुरुशीर्ष्टमे निजम, और मेरे सिर पर आप अपना चरण रखिए और आज मेरे इस शरीर को भी आप नाप लीजिए और अपने भक्त की वाणी को प्रभु सत्य कर दीजिए, कहीं ऐसा न हो कि आपके भक्त की वाणी असत्य न हो जाए। राजा बलि भगवान के चरणों में झुक गए और प्रभु ने राजा के मस्तक पर अपना चरण रखा और तीसरे वचन को सत्य कर दिया और कहा कि राजा, अब तुम सुतल लोक में जाओ अपने परिवार को लेकर। जब जाने लगे, थोड़ी दूर गए, फिर लौट करके आ गए तो पूछा भगवान ने, क्यों लौट करके आए हो बलि, क्या आपकी जाने की इच्छा नहीं है? बोले प्रभु, जाने की तो आपकी आज्ञा है, आप मुझे भेज रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं हो रही है आपके सामने से हटने की। ये बताइए कि आपके इस वामन रूप का अब दर्शन मुझे कब मिलेगा? तो भगवान ने कहा कि राजा बलि, भैया तूने मुझे अपना तन दिया, अपना मन दिया, अपना धन दिया, तो क्या मैं तुझे अपना ये वामन रूप नहीं दे सकता हूं? भगवान ने कहा कि देख राजा बलि, आज मैं तेरे से प्रतिज्ञा करता हूं कि जहां तू सुतल लोक में रहेगा तो तेरे राज महलों के द्वार पर इस वामन भेष को धारण कर हाथ में गदा लेकर के तेरे द्वार पर हमेशा हमेशा के लिए तेरा चौकीदार बनकर के खड़ा रहूंगा। जब तू राज महलों से बाहर निकलेगा तब तब तू मेरे इस वामन रूप का दर्शन करेगा। दर्शन सुतल लोक में भगवान अपने भक्त के द्वार पर हाथ में गदा लेकर के वामन देव खड़े हैं, भगवान नारायण खड़े हैं। इस प्रकार से प्रभु ने अपने भक्त के संकल्प को पूर्ण कराया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा सत्यव्रत को दर्शन दे करके प्रभु ने वेदों की प्रतिष्ठा की और नौवें स्कंद में ये दो वंशों की कथा है। सबसे पहले सूर्य वंश की कथा है। एक बार ताली बजा करके वामन भगवान का स्वागत करें। मैं संक्षिप्त में ही सूर्यवंश का कौन कौन से राजा हैं और फिर आपको भगवान के जन्म की सुंदर कथा में प्रवेश और झांकी का दर्शन दिव्य हम उत्सव की ओर अब चल रहे हैं। क्योंकि प्रमुख रूप से भागवत में तो भगवान कृष्ण की ही लीला है, ये सब अवतार लीला केवल कृष्ण लीला को पुष्ट करने के लिए है। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित, जब प्रलय काल व्यतीत हुआ था तो सबसे पहले मनु बने थे श्राद्धे मनु, और जिन श्राद्धे मनु के 10 पुत्र थे इक्ष्वाकु नृग सरियाति धृष्टिष्ठ नरशंत नभग और कवि, जिनमें से सरियाति महाराज जो थे इनकी ही बेटी थी जिनका नाम था सुकन्या और जिनका विवाह चवन ऋषि के साथ हुआ। इनके वंश में आगे चलकर के एक राजा हुए थे जिनका नाम था रैवत और जिनके पुत्र थे ककुद्वी और जिनकी बेटी तिरेवती जिनका विवाह बलराम जी के साथ हुआ है। आगे इसी वंश में मनु जी के जो पुत्र थे नभग, नभग के पुत्र हुए नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए महाराज अम्बरीश, जिनके एकादशी का वृत्तांत श्रीमद् भागवत में है। सबई मन कृष्ण पदारविंदयोर वचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने। आप लोग एकादशी का व्रत अब आई रही है, एकादशी आमल एकादशी फागुन शुक्ला, हाँ बाबा के चरणों में मनाओगे एकादशी। लेकिन एकादशी घर में भी मनाओ तो मेरी सलाह जरूर मान लेना। एकादशी का व्रत लोग जो करते हो तो इस प्रकार से व्रत करना, व्रत तो आप करते हो ठीक है शास्त्रोक्त विधि से, लेकिन एकादशी का जो व्रत है व्रत को हम कहते हैं उपवास, और संस्कृत में उप माने होता है समीप नजदीक निकट। तो किसका निकट किसका निकट, बोले जिस दिन व्रत हो उस दिन हम ज्यादा से ज्यादा अपने ठाकुर का अपने आराध्य का हम सानिध्य प्राप्त करें। मनसा वाचा कर्मणा तीनों से हम व्रत करें, उस दिन मन भी हमारा प्रभु के चरणों में हो, वाणी से भी हम गुणानुवाद गाएं और अपने कर्म भी हम प्रभु को अर्पण करें। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों से जब हम व्रत करते हैं तो हमारा व्रत वो सार्थक होता है, हमारा उपवास तब सार्थक होता है। मनु जी के जो प्रथम पुत्र थे इक्ष्वाकु, जिनके निमि दंडकादि 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे, इन्हीं के वंश में महाराज युवनाश्व का जन्म हुआ था और युवनाश्व महाराज की 50 कन्याएं हुई जिनकी शादी संत सौबी ऋषि के साथ हुई थी। इनके वंश में आगे चलकर के एक राजा हुए थे जिनका नाम था बाहुक, जिनका समस्त राज्य क्षत्रियों ने हरण कर लिया था। एक रानी गर्भवती थी और रानी ने विचार किया कि इसके जब बालक होगा तो वो गद्दी पर बैठेगा, ये राजमाता बन जाएगी। तो और रानियों ने उस रानी को भोजन में जहर मिला करके दे दिया, उसकी मृत्यु नहीं हुई। क्योंकि जाको राखें साइयां मार न सके हैं कोई, बाल न बांको कर सके जो जग बैरी होए। जाको राखें साइयां। तो इस प्रकार से जहर के सहित उस बालक का गर्भ से जन्म हुआ तो नाम पड़ा था सगर। ये सगर महाराज थे। संस्कृत में जहर को कहते हैं गर। तो जहर के सहित ही बालक का गर्भ से जन्म हुआ तो नाम पड़ा सगर महाराज। और जिन सगर महाराज की दो पत्नियां थी, पहली पत्नी से 60,000 संतति का वर्णन भागवत में है, जो सब के सब कपिल भगवान के शाप से जल करके भस्म हुए। लेकिन इनकी दूसरी पत्नी थी, उनसे एक पुत्र हुए थे केवल, जिनका नाम था अस्मंजस। ये योग से भ्रष्ट थे, योगी थे लेकिन योग से पतित हो गए थे। इसी प्रकार से इनके वंश में महाराज भगीरथ का जन्म हुआ था, जिन्होंने गंगा का आह्वान किया और गंगा मैया को लेकर के आए थे अपने पितरों को पवित्र करने के लिए। भगीरथ के पुत्र है महाराज सुदास, सुदास के पुत्र श्रुत, और श्रुत के पुत्र है सुदास, सुदास के पुत्र है महाराज सुदास। ये मदयंती के पति थे। इन्हीं के वंश में महाराज अस्मक का जन्म हुआ। आगे चलकर के एडविड, एडविड के पुत्र है हमारा विश्वसह, विश्वसह के पुत्र है हमारा खट्वांग, खट्वांग के पुत्र है हमारा दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र के यहाँ हुए महाराज। आगे चलकर के रघु, रघु के पुत्र है महाराज अज, अज के यहाँ हुए महाराज दशरथ। और जिन दशरथ के घर भगवान ने चार रूप से अवतार धारण किया है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भागवत में बहुत संक्षिप्त में राम कथा है। वक्ता लोग समय होता है तो कभी विस्तार करते हैं, लेकिन बहुत संक्षिप्त में राम कथा है। केवल दो अध्याय में एक एक श्लोक में भगवान की एक एक लीला का संकेत किया है राम जी की। मैं इस श्लोक में भगवान राम को वंदन कर रहा हूं क्योंकि संपूर्ण रामायण इस श्लोक में है कि गुरुवर थे त्यक्त राजो व्यचर दनु वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथुर्जो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या चुर्पणक्षा प्रिय विरहरुषारोपित भ्रू विजंभ त्रस्ताब्दिर्बद्ध सेतु खलदव दहनु कौशलेन्द्रो सुखदेव जी ने इस श्लोक में संपूर्ण रामायण का वर्णन कर दिया है। संपूर्ण राम जी की लीला इस श्लोक के अंदर आ गई है। और अंत में सुखदेव जी महाराज ने भगवान राम को प्रणाम करते हुए कहा कि कौशलेन्द्रो वतान्नः राम एव परम ब्रह्म राम परम तपः राम एव परम तत्त्वम् समो ब्रह्मेव शाश्वतम। भगवान राम साक्षात ब्रह्म हैं, उनके श्री चरणों में हम प्रणाम करें। कौशलेन्द्रो वतान्न हम सबकी प्रभु राम रक्षा करें। इसी प्रकार से चंद्रवंश में आगे सुखदेव जी ने दो श्लोकों में कृष्ण लीला भी सुनाई है। जातो गतः पितृग्रहाद ब्रज मेधिता रतो हत्वा रिपोन शुत शतानुक्रतो रुदार उत्पाद्यतेषु कृतवी समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयंजनेषु। दो श्लोकों में कृष्ण लीला बताने के बाद सुखदेव जी ने एक एक लाइन में कृष्ण लीला भी बताई। देखिए बड़ी समझने की बात है, राम की कथा दो अध्याय में सुनाई और दो श्लोकों में कृष्ण लीला सुनाई नौमी स्कंद में ही, और एक एक लाइन में बता दी कि मथुरा में जन्म, गोकुल में वृद्धि, अघासुर बकासुर आदि दुष्टों का संहार, और 11 वर्ष 4.5 महीने ब्रज में रहकर के फिर भगवान का मथुरा गमन, मथुरा में जाकर के कंस आदि दुष्टों को मारना, और फिर द्वारिका का निर्माण करके रुक्मण जी के साथ विवाह करना, और कौरव और पांडव दोनों का युद्ध कराकर धर्म की स्थापना कराना, और अंत में उद्धव जी को ज्ञान उपदेश देकर के भगवान का परम धाम गमन। बस इतना कहकर के सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए। 5 मिनट निकले, 10 मिनट निकले, 15 मिनट हो गई, कथा बंद हो गई। अब कुछ बोले, अब कुछ बोले, अब कुछ बोले, लेकिन सुखदेव जी बिल्कुल शांत बैठे थे। क्यों? इसलिए कि अब महाराज परीक्षित हमसे प्रश्न करेंगे, तब इनको कृष्ण कथा में सुनाऊंगा। राम कथा तो दो अध्याय में बता दी, लेकिन कृष्ण कथा को विस्तार से मैं तब सुनाऊंगा जब मेरे से प्रश्न करेंगे। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रणाम करके कहा कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्।